फ्लैशबैक। पकड़ो, कोई पकड़ो इसे, ये चोर मेरा फोन चुराकर भाग रहा है। बाइक चलाते हुए माधव के कानों में किसी लड़की की चीखने की तेज आवाज पड़ी, जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने बाइक की रफ्तार कुछ कम करते हुए तुरंत ही आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई। उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ भागती एक लड़की पर पड़ी। ब्लू जीन्स पर व्हाइट कुर्ती पहने, मल्टी कलर स्कार्फ गले में लपेटे हुए, वो लड़की उसके आगे भागते एक लड़की के पीछे बदहवास से दौड़ रही थी और लगातार चिल्ला रही थी। भागने के कारण उसकी कमर तक आती चोटी में बंधे बाल कभी दाएं तो कभी बाईं झूल रहे थे। माधव उसका चेहरा साफ न देख सका। दोपहर का वक्त था, इसलिए सड़कों पर लोग नाके बराबर ही नजर आ रहे थे। चंद गाड़ियां चल रही थीं। सड़क किनारे खड़े कुछ लोग तमाशा देख रहे थे तो कुछ इंसानियत के नाते उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर वो चोर मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा था और सबको चकमा देते हुए गाड़ियों के बीच से निकलते हुए लगातार भाग रहा था। पर वो लड़की भी खूब हिम्मत वाली थी और उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। चोर ने अपना रास्ता बदला तो लड़की भी उसके पीछे भागी। उस लड़की को यूं बीच सड़क पर एक चोर के पीछे भागते और मदद के लिए चिल्लाते देखकर माधव ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। आगे के कट से अपनी बाइक घुमाते हुए वो एकदम से उस चोर के सामने आ गया। वो चोर जो रेड लाइट का फायदा उठाकर भागने की फिराक में था, बाइक के सामने आने से संभल नहीं सका और उसे टकराते हुए सड़क पर गिर गया। अगले ही पल वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और भागने की फिराक में ही था कि माधव ने उसकी गर्दन दबोचते हुए उसे बीच सड़क पर पटक दिया और उसके दोनों हाथों को मोड़ते हुए उसकी पीठ पर जकड़ लिया। वो चोर उससे छूटने को छटपटाने लगा। अब तक गूंगे बहरे बने तमाशा देखते लोगों ने उस चोर को घेर लिया था। वो लड़की भी बदहवास से दौड़ती हुई वहां पहुंची। आखिरकार तुम पकड़े गए, एक लड़खड़ाती हुई तीखी सी आवाज माधव के कानों से टकराई। निगाहें उस सफेद कुर्ते वाली लड़की की ओर घूम गईं। कड़कती धूप चिलचिलाती बदन को झुलसाने वाली गर्मी में जाने कब से उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी वो। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, शब्द लड़खड़ा गए थे और आवाज में एक इत्मीनान के साथ गुस्सा झलक रहा था। चेहरा पसीने से तर था, चोटी से निकलती लटे पसीने से भीगकर उसके चेहरे व गर्दन पर बेतरतीब से चिपके हुए थे। सूरज की सुनहरी किरणों से उसका गेहुआ रंग सोने सा दमक रहा था। गुस्से से दहकते उस चेहरे पर अलग ही कशिश बिखरी थी। माधव एकटक उस लड़की को देखता रहा जबकि वो लड़की गहरी गहरी सांसें भरते हुए चोर के सामने आ खड़ी हुई। बहुत भागने का शौक चढ़ा था तुम्हें, इतनी देर से मुझे अपने पीछे दौड़ाए जा रहे हो, पर अंत में पकड़े ही गए ना। चलो अब जल्दी से मेरा फोन निकालो। वो चोर जिसके दोनों हाथों को मोड़कर पीठ से लगाए माधव ने उसे अपने घुटने से फर्श पर दबाया हुआ था, सर उठाकर उस लड़की को देखने लगा और चेहरे से शराफत टपकने लगी। मैडम, हमें नहीं पता आप किस फोन की बात कर रही हैं। उस चोर की ये बात सुनकर उस लड़की का माथा ठनक गया और भौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। मेरे साथ ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मेरा फोन लेते देखा है, इसलिए बिना कोई नाटक किए चुपचाप शराफत से मेरा फोन वापस करो, वरना अपनी सैंडल से इतना मारूंगी कि टकले हो जाओगे, और माँ कसम उस टकले पर दोबारा कभी बाल नहीं आएंगे, और दोबारा ऐसे किसी लड़की का फोन चुराने से पहले मेरी मार को जरूर याद करोगे। वो लड़का अब भी मुकरता रहा। गुस्से से भड़की उस लड़की ने अपनी सैंडल उतारी और तबीयत से उसकी धुलाई शुरू कर दी। उसके सर पर सैंडल बरसाते ही चली गई। देता है मेरा फोन या अभी और धुनाई करवाना चाहता है अपनी। उसका टकला सुझाने के बाद उस लड़की ने चेतावनी भरी निगाहों से उसे घूरा। उस लड़के की हालत खराब हो चुकी थी, वो तो अब भी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि फोन उसने चुराया है। ये देखकर माधव ने उसके पैंट की जेब चेक की तो चार फोन निकले। इनमें से आपका कौन सा है? माधव ने चारों फोन उस लड़की को दिखाए तो उसने झट से अपना फोन उठा लिया। पहले उसने उसे अच्छे से आगे पीछे चेक किया और जब तसल्ली हो गई कि फोन को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो उसने एक और सैंडल उस लड़के के सर पर मार दी। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने फोन नहीं चुराया था ना, तो मेरा फोन तुम्हारी जेब से कैसे निकला? रुको, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, जब तशरीफ पर डंडे पड़ेंगे ना तो चोरी करने का सारा मजा निकल आएगा। बड़े आए थे मेरा मोबाइल चुराने, मुझे अपने पीछे इतना दौलाया, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जब तक तुम्हें पुलिस के हवाले करके तुम्हारी अच्छे से सुताई नहीं करवा देती, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। गुस्से में उस 17-18 साल के लड़के पर भड़कते हुए उस लड़की ने पुलिस को फोन लगाया और यहाँ उसकी मार से बेहाल उस चोर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पुलिस का जिक्र सुनते ही उसके सुरताल ही बदल गए। माफ कर दो दीदी, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा, पुलिस को फोन मत करो। उस चोर को गिरगिट जैसे रंग बदलते देखकर उस लड़की की भौहें तन गई और आंखें सिकोड़कर वो उसे घूरते हुए उस पर भड़क उठी। अच्छा जी, अब दीदी बन गई मैं तेरी। जब मेरा फोन चुराकर भाग रहा था तब नहीं याद आया तुझे कि चोरी करना गलत है, तब से शराफत से फोन मांग रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ा शरीफ बनकर कह रहा था कि तूने नहीं चुराया फोन, और अब जब रंगे हाथों पकड़ा गया और सजा की बारी आई तो कितनी जल्दी माफी मांगने लगा। पर कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरा फोन बच गया, पर अब तक जाने कितने गरीब लोगों की जेब काटी होगी तुमने, कितने लोगों के फोन चुराए होंगे, कितने इनोसेंट लोगों को तुम्हारे कारण परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। आज अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसलिए तुम्हें सबक मिलना बहुत जरूरी है, पुलिस तो अब आकर ही रहेगी। लड़की ने पुलिस को फोन लगाया ही था कि इतने में पुलिस चीफ वहां आकर रुकी। शायद किसी ने उन्हें पहले ही फोन करके बुला लिया था।
क्या हो रहा है यहाँ? भीड़ को हटाते हुए इंस्पेक्टर आगे आए। बहुत सही वक्त पर आए आप इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का मेरा फोन चुरा कर भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है और इसके पास से 3 फोन और मिले हैं। उस लड़की ने तुरंत ही संक्षेप में पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। हवलदार ने आगे आकर उस चोर को पकड़ लिया। भीड़ तितर बितर हो गई जिससे ट्रैफिक क्लियर हुआ। लीगल प्रोसीजर पूरा करने के लिए उस लड़की को थाने जाना पड़ा और साथ में बेवजह माधव भी फंस गया क्योंकि उस चोर को पकड़ा तो उसने ही था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी चोरी करने के पीछे क्या वजह है, पर मैं इतना जानती हूँ कि इन सब बुरे कामों से अच्छा है कि मेहनत मजदूरी करके इज्जत से 4 पैसे कमाएं। क्यों बेवजह गरीबों की बद्दुआ लेनी? जिन लोगों की तुम जेब काटते हो, बेचारे वे गरीब लोग साल में 365 दिन गधे जैसे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं ताकि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके, अपना सुख चैन आराम सब कुर्बान करते हैं, और उनके खून पसीने की कमाई पर जब तुम जैसे चोर हाथ साफ करते हो तो उन पर और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकते। मिडिल क्लास घरों में कैसे एक एक पैसा जोड़कर फोन खरीदा जाता है और तुम उसे भी चुरा लेते हो, उसके बाद उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, इससे तो तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर जेब काटने और चोरी करने का इतना ही शौक है तो अमीरों की जेब काटो, उन्हें अपना शिकार बनाओ, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर गरीब पहले ही एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, उन्हें बख्श दो। खैर, तुम जैसे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर जरा भी अच्छाई या इंसानियत जिंदा हो तो ये काम छोड़ दो।
उम्र ही कितनी है अभी तुम्हारी, कोई ऐसा काम करो कि लोगों की दुआएं मिले और तुम भी सर उठाकर इज्जत से जिंदगी जी सको, वरना आज छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हो, इस गलत रास्ते पर चलते हुए कल को कोई बड़ा गुनाह करोगे और एक दिन इसी जेल की चारदीवारी में कैद होकर रह जाओगे। उस लड़की ने उस लड़के को समझाने की कोशिश की थी। यहाँ की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी तो अपना फोन लेकर वो पुलिस थाने से बाहर निकल गई। माधव भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। वैसे बहुत बहादुर हैं आप, माधव के प्रशंसा भरे अल्फाज उस लड़की के कानों से टकराए और उसने मुंह बना लिया। बहादुर क्या खाक हूँ, और क्या फ़ायदा इसी बहादुरी का, इतनी देर उस चोर के पीछे दौड़ी तब जाकर पकड़ा भी तो आपकी मदद से, और अब पुलिस में रिपोर्ट कराकर भी कौन सा तीर मार लिया मैंने। ये सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, आपस में सबकी सांठ काट होती है। पुलिस वाले कौन से शरीफ हैं, इन चोरों से कमीशन वसूलते हैं तभी तो इनकी हिम्मत बढ़ती है। अभी भी रिपोर्ट हुई है तो कानून के रक्षक बनकर दिखावे के लिए उसे 1-2 दिन अंदर जेल में बंद रखेंगे, फिर वार्निंग देकर छोड़ देंगे और वो लड़का फिर से वही काम करना शुरू कर देगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लूटने के लिए सबको बेचारे गरीब लोग ही क्यों नजर आते हैं। सरकार उनका खून पीती है, अमीर लोग उनकी खून पसीने की कमाई से राजा बने ठाट बाट से जिंदगी गुजारते हैं, ये पुलिस भी गरीबों पर ही अपनी धौंस जमाती है, और ये चोरू चक्के भी उन्हीं की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करते हैं। चोरी करने का इतना ही शौक है तो अमीरों की जेब काटो, उनके महलों में टाठा डालो, उनकी कंपनियों को लूटो, उनकी महंगी महंगी गाड़ियां चुरा कर भाग जाओ, पर नहीं, सबको हम गरीबों का ही खून चूसना है। वो लड़की कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी और चिढ़ते हुए जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर कब माधव के लबों पर मुस्कान उभर आई इसका एहसास खुद उसे भी नहीं हुआ। जो भी हो, पर आपने अंत तक हार नहीं मानी, आपकी वजह से वो चोर पकड़ा गया और आपने उसे समझाने की कोशिश भी की, ये भी बहुत बड़ी बात है, और आप ब्रेव के साथ बोल्ड और समझदार भी हैं। एक बार फिर अपनी तारीफ सुनकर उस लड़की ने अपनी नाक से कोड़ते हुए बुरा सा मुंह बना लिया, फिर अपनी उंगलियों से चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर कान के पीछे करने लगी। माधव की नज़र उसकी बाह पर पड़ी और चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। अरे, आपको तो चोट लगी है। लड़की ने अब नज़र अपनी बाह पर डाला। अपनी छिली कोहनी को देखकर उसकी आंखों के आगे वो दृश्य घूम गया जब वो बस में चढ़ी ही थी कि भीड़ का फायदा उठाकर उस चोर ने उसका फोन उसकी पॉकेट से निकालने की कोशिश की थी, जिसका पता चलते ही उसने उस चोर का हाथ पकड़ लिया था, पर वो उसका हाथ छुड़ाते हुए बस से उतर गया और वो पीछे वो भी उस बस से कूद गई जिसने चलना शुरू कर दिया था। चोर तो भाग निकला, शायद आदत थी उसे इन सब की, पर वो लड़की सड़क पर मुंह के बल गिर गई जिससे बाह छिल गई, पर उसका ध्यान तो सिर्फ उस चोर और अपने फोन पर था, तो अपनी चोट, दर्द और जलन को नजरअंदाज करते हुए वो उस चोर के पीछे लग गई। वो सब याद करते हुए उस लड़की के चेहरे पर कई भाव उभरे और अंत में मोहिनी मुस्कान उन लबों पर आ ठहरी। मेरी बहादुरी का इनाम है ये, आपको चोट लगी है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए आपको, माधव ने चिंतित स्वर में कहा। उसकी सलाह को उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही बेफिक्री से ठुकरा दिया। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी छोटी मोटी चोट तो रोज लगती ही रहती है, घर जाकर दवाई लगा लूंगी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज आप उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो शायद वो चोर अपने इरादों में कामयाब हो जाता और मुझे मेरा फोन कभी वापस नहीं मिलता। थैंक्स अ लॉट। वो लड़की अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी। माधव कुछ पलों से जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्या था, पर कुछ तो था उस लड़की के व्यक्तित्व में जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। फिर सर झटकते हुए अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। क्रमशः